नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय। और विंबलडन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन पुरुष डबल्स के पहले दौर में खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मणिपुर में स्थिति नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने स्वयं मणिपुर जाकर शांति के प्रयासों का नेतृत्व किया।
मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने मणिपुर में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाढ़ राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 कंपनियां तैनात हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया।
संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया। वो कौन सा संविधान है जो एक संसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है।
श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध करने की रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। श्री मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की गति और विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं।
हमने करीब करीब 12,00,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी, भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है। हमने MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए। पहले MSP की घोषणा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया।
विपक्ष के बहिर्गमन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में अपने ही सवालों के जवाब सुनने का साहस नहीं है। उन्होंने इसे उच्च सदन का अपमान बताया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के आचरण पर निराशा व्यक्त की। श्री धनखड़ ने विपक्ष के नेता के सदन के वेल में आने को संसदीय आचरण और मर्यादा का अपमान बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष के आचरण की आलोचना की है।
आज राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष पूरे अपने बात रखा और सबने सुना। बीच में टोका टोकी थोड़ा थोड़ा होते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री बोलने के लिए जब खड़े हुए और कुछ ही समय हुए थे उसी समय वहां से हंगामा शुरू कर दिया। उसमें माननीय सभापति की ओर से भी कड़ी निंदा की गई है और ये एक तरीके से सदन का नियम का भी अवहेलना किया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने उच्च सदन से वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि सरकार ने कथित तौर पर कुछ भ्रामक तथ्य पेश किए थे। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा तथा आरएसएस ने संविधान का विरोध किया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा की। इससे पहले कल लोकसभा की कार्यवाही श्री मोदी के संबोधन के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 सदस्य होंगे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह शामिल हैं। मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिमंडल की 10 सदस्यीय संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति में प्रधानमंत्री सहित 14 सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से आज मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर समीक्षा बैठक भी की। इस दुर्घटना में मृत 121 लोगों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग शामिल थे। 31 घायलों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटना की जांच के लिए कई विशेष दल बनाए गए हैं।
इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएंगे।
दुर्घटना में मृतकों के नाबालिग बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाथरस दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन ने आज सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इससे पहले चंपई सोरेन ने आज इस्तीफा दे दिया। इस वर्ष 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन मामले में गिरफ्तार होने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। नारायणपुर के अबूझमाण क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मंगलवार से मुठभेड़ चल रही थी। दिल्ली की विशेष अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। अदालत ने इसी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति के विधायक के कविता की न्यायिक हिरासत भी 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। देश में 96,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 5G स्पेक्ट्रम की नई नीलामी शुरू की है। कल से शुरू नीलामी में 8 बैंड शामिल हैं। इसमें प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां 5G मोबाइल सेवाओं के लिए आवश्यक रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। अगस्त 2022 में हुई पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार को रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे। भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान रबी मौसम के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। ये खरीद पिछले वर्ष के 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। इससे 22 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में जीका वायरस की कुछ रिपोर्ट के मद्देनजर राज्यों को एक परामर्श जारी किया है। इसमें जीका वायरस की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने की बात कही गई है। मंत्रालय ने राज्यों से प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की जीका वायरस संक्रमण की जांच करने का निर्देश देने को कहा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति नारायण मिश्र।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने आज पहली बार 80,000 अंक को छू लिया। सेंसेक्स 79,987 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,287 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर के मुकाबले रूपया 83.53 पर बंद हुआ।
विम्बल्डन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के पहले दौर में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन का मुकाबला रद्द हो गया है। इससे पहले सुमित नागल और सर्बिया के उनके जोड़ीदार दुसान लोजेविक को हार का सामना करना पड़ा। टी20 क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन की बदौलत हार्दिक पंड्या आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। पंड्या श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हंसरंगा के साथ शीर्ष पर हैं। पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की है। टी20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम 3 दिन से बेरिल तूफान में फंसे रहने के बाद आज सुबह बारबाडोस से स्वदेश रवाना हुई। टीम कल सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी। भारतीय टीम सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। बीसीसीआई ने शाम को मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में एक समारोह का आयोजन किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के बीच देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। रविवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मणिपुर शाखा ने आज मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल में 3 नए कानूनों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए वार्तालाप शीर्षक से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 50 पत्रकारों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में मणिपुर के पुलिस अधीक्षक हाओ बाम संघमिता ने नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षकों से स्वनामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय। और विम्बल्डन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन पुरुष डबल्स के पहले दौर का मुकाबला रद्द। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
अगर आपको भी संगीत से है लगाव और रखते हैं संगीत में प्रतिभा तो आप भी अपना करियर भारतीय नौसेना के साथ बनाएं। अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार अग्निवीर MR म्यूजिशियन नवंबर 2024 बैच के लिए 1 जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2024। विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज।